नहीं है, और तुम ये कैसे कमेंट्स दे रहे हो जो इतना बड़ा एग्रेसर है और ये है, और जिसने कि इतना खराब काम दुनिया के अंदर किया है, और तुम जो है उसको। तो फिर उसने मैक्रों ने फिर कहा कि हम मीडिएशन की तरफ जाना चाहते हैं, हम इस वॉर को बंद कराना चाहते हैं, हम कहते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट बंद होए, क्योंकि जाहिर है इनकी भी इकोनॉमीज हर्ट हो रही है ना माजद भाई, सारे यूरोप की भी हर्ट हो रही है। तो उसने कहा जी कि हम, जैसे वो मुशरफ साहब को कहा था अमरीका ने सब कुछ बंद करो अफगानिस्तान के साथ, तो मुशरफ ने कहा कि नहीं, वी विल कीप वन विंडो ओपन। तो फिर उसका फायदा सबको ही हुआ, इन सबको हुआ। फिर जब बात करनी थी, पाकिस्तान को कहा हाँ जी अब बात करो जी, अब इनके साथ तालिबान। तो दैट्स व्हाट ही सेड कि वी शुड कीप आवर डोर्स ओपन, और इतना भी ह्यूमिलेट ना कर दो कि वो अपने दिल पे ले ले और वो कह जी अच्छा ठीक है खली वली कोई बात नहीं कर रहा अब मैं तुमसे ना। तो उसके लिए तो जी ये इन्होंने जी उनको बड़ा आज खींचा है ज़ेलेंस्की साहब ने, और इनकी जो यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्ट्री के जो डिमिट्रो कुबेला हैं उन्होंने भी कहा है कि ये इनके जो कमेंट्स हैं बिल्कुल अनवॉरंटेड और अनकॉल्ड फॉर हैं। कीव जो है जी, अब इधर भी कीव के अंदर भी, अब यूक्रेन के अंदर भी दो अलग-अलग हैं। कीव के अंदर जी जो यहां पे कुछ इलाके हैं उनके मेयर्स कह रहे हैं कि रशिया ने अपनी बम्बार्डमेंट बेतहाशा बढ़ा दी है, और तकरीबन ये सारा ही इलाका जो है ये इनके कब्जे में आ गया, खासतौर पे ईस्टर्न का जो कीव का इलाका है या यूक्रेन का इलाका है वो बैटलफील्ड बिल्कुल बहुत ज्यादा बना हुआ है। 20% स्ट्रेटेजिक गेन्स हैं इनके जो ये इलाके हैं सेवरन डॉन्स के और बाकी के इलाके हैं। अच्छा, उस पर मॉस्को ने यह भी कहा है कि जी अब ये इन्होंने रिट्रीट शुरू कर दिया यूक्रेन की फोर्सेस ने, यूक्रेन कह रहा है कि रशिया को हम डिफीट दे रहे हैं और रशिया पीछे हट रहा है। तो अब ये समझ नहीं आ रही
हकीकत
क्या है, पता नहीं है कि कौन पीछे हट रहा है। बहरहाल ये दोनों तरफ से जो है ये लुहांस्क के एरिया में और ये सारी जगहों पर काफी लड़ाई हो रही है, रशिया कह रहा है जी हमारे गेन्स हो रहे हैं, यूक्रेन कह रहा है कि हम इसको डिफीट करके पीछे कर रहे हैं। वीकेंड के ऊपर जनाब साउथ कोरिया और जो सॉरी नॉर्थ कोरिया जो है उसने काफी सारे फिर से मिसल्स जो हैं उनके टेस्ट किए, तो आज मंडे को साउथ कोरिया और यूएसए ने जो है काउंटर जो हैं वो मिसल्स के वो किए, टेस्ट किए, यानी टेस्ट क्या किया छोड़े जरा बताने के लिए कि जी वी आर रेडी, वी आर वॉर रेडी। और ये जो था साउथ कोरिया से इन्होंने किया था, और ये सरफेस टू सरफेस मिसल्स थे जो कि इन्होंने किया। आपको पता ही है कुछ दिनों से जो नॉर्थ कोरिया है वो भी काफी सारे मिसल्स के वो कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। तो योन हैप न्यूज एजेंसी जो है साउथ अफ्रीका की, उसने साउथ कोरिया की मिलिट्री को कोट करते हुए कहा है कि ये जो है यूएसए और साउथ कोरिया उन्होंने भी ये डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की है,
हाँ
ये डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की है कि हम भी रेडी हैं, और अगर तुमने हमें स्ट्राइक किया तो हम भी प्रिपेयर्ड हैं इस चीज के लिए और केपेबल हैं। साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं यून सुक योन जो कि अभी बने हैं प्रेसिडेंट, नए बने हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये जो नॉर्थ कोरिया जो कुछ भी कर रहा है ये बिल्कुल जो है वो ठीक नहीं है, और ये वैसे तो कह रहे हैं कि जी हम ज्वाइंट ड्रिल्स कर रहे हैं, तो हम भी ज्वाइंट ड्रिल्स कर रहे हैं यूएसए के साथ। तो अब पता नहीं ये इसमें भी क्या सच्चाई है, अब कौन किसको क्या बताना चाहता है। बहरहाल ये है, ये अभी आपने माजिद भाई बताई है यूएसए के अंदर जो वीकेंड के ऊपर ये मारामारी चलती रही, तो मैं जरा थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज ये पूरी जरा टाइमलाइन निकाली है कि पिछले जो है जो थोड़े से दिन हैं उसके अंदर क्या कुछ हुआ है। वो कहते हैं जी 156 डेज जो हैं उनके अंदर ओवर 200 जो हैं मास शूटिंग्स हो चुकी हैं, जो इस वीकेंड पे थी उसमें जो एक शूटिंग हुई है ये पेंसिल्वेनिया में, उसमें 15 लोगों की डेथ्स हुई हैं और 60 जो हैं वो हो गए हैं, जख्मी हो गए हैं। एट स्टेट्स में हुए हैं। पेंसिल्वेनिया में क्या हुआ है कि वहां पे 3 लोग जो हैं उनकी गन फायर से डेथ हो गई है, 11 वुंडेड हैं। इसी तरह चटंगुआ के अंदर जो है ये नाइट क्लब का एरिया बड़ा अप मार्केट किस्म का, वहां पे शूटिंग हुई है, 3 लोगों की डेथ हुई है, 14 इंजर्ड हैं। साउथ कैरोलिना में हुआ है, 8 लोग जो हैं वो देवर किल्ड इन यू नो ड्यूरिंग अ ग्रेजुएशन पार्टी, और इसके अंदर जो है कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। इसके अलावा फीनिक्स स्ट्रिप मॉल के पास जो है वहां पे कुछ लोगों की 14 लोगों की डेथ हुई है, 8 लोग इंजर्ड हुए हैं। इसके अलावा शूटिंग्स होती रहीं वीकेंड पे टेक्सास, जॉर्जिया, न्यूयॉर्क सिटी और मिशिगन में। तो वो कहते हैं जी कि ये मैस शूटिंग्स दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं।
एंड देयर आर मैस शूटिंग्स ऑफ 200 इन ओनली 2022, अभी 6 महीने गुजरे।
जी अभी अभी सिर्फ 6 महीने गुजरे हैं और 200 जो हैं वो डेथ्स हो चुकी हैं। तो
200 इंसिडेंट्स
हो चुके हैं,
200 इंसिडेंट्स हुए हैं, और मैस शूटिंग इज व्हेन 4 पीपल और मोर डाइज।
यस दैट्स राइट। तो वो कह रहा है
तो ये 200, जस्ट इमेजिन 200।
ये जो लोग हमारा देख रहे हैं, हमारा टीवी, उनको ये ग्राफिक भी नजर आएगा एक जो हमने आप आपको दिखा रहे हैं, तो आप ये देखें जरा। तो इसमें ये फिर से एक दफा से ये आ गई है सारी डिबेट के जी, आप अब गन अब भी कंट्रोल करने हैं कि नहीं करने। लास्ट वीक हमने आपको बताया था कि बाइडन साहब ने अपील की थी कि भाई आप लोग प्लीज इसके ऊपर कुछ करें, तो अभी तक जो है वो बिल पास नहीं हुआ है, तो जो है उसकी काफी मुखालफत भी की गई थी, तब देखेंगे क्या होगा। अच्छा जनाब, एलन मस्क साहब जो है उन्होंने कहा जी कि मैं ट्विटर की डील से मैं वापस आ जाऊंगा अगर आपने वो ना किया जो मैं आपको कह रहा हूं। अच्छा अब ये क्या कह रहे हैं, आपको पता ही है कि ये सीईओ है टेस्ला और स्पेस एक्स के, इन्होंने एक लेटर इनके जो है इनके लॉयर्स जो है उन्होंने लिखा है, और उन्होंने कहा जी कि ये जो 44 बिलियन US डॉलर की बिड टू बाय ट्विटर है वो नहीं ये आगे लेकर जाएंगे, अगर ये जो इन्फॉर्मेशन रहे हैं जो कि इनको चाहिए इवैल्यूएट करने के लिए बिफोर इट बायस, कि ये जो इसके 229 मिलियन अकाउंट्स हैं ये फेक हैं कि नहीं।
एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर यू टू से, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी और उसके अंदर हमने तो छोटी जगहों पे सुना है कि भाई वहां पर फेक अकाउंट्स बना लेते हैं, है ना। जस्ट इमेजिन कि इनके 220 मिलियन जो फॉलोअर्स हैं ट्विटर के, उसमें पता नहीं कितने मिलियन जो हैं वो फेक हैं अकॉर्डिंग टू एलन मस्क। वो कह रहे हैं कि भाई ये तो फेक अकाउंट्स हैं, तो मुझे तो मुझे पता लगे, प्रूफ करो कि ये सही है, तो मैं तो उनको दूंगा ये 43 बिलियन डॉलर्स। इफ दे आर फेक्स देन द वैल्यू इज वेरी हाई दैट आई एम पेइंग यू, नो इसको फिर इस पे वैल्यू पे डिस्कस
करेंगे। हाँ जी, लेकिन जब ये 44 बिलियन भी जब इन्होंने अनाउंस किया था तो आपको पता ही है उसमें भी लोगों ने कहा था इतनी बड़ी कंपनी है ये भी पैसे बहुत कम है, तो अब वो कह रहा है अच्छा ठीक है पैसे कम है तो अब मैं देखना चाहता हूं कि असल में अकाउंट्स कितने हैं, तो ये जब तक मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी मैं नहीं इसको बाय करूंगा, तो आप मुझे बताएंगे। तो फिर तो उसकी अब ये जब से खबर आई है तो आज मंडे के दिन जो है अब ट्विटर के जो शेयर्स थे वो टंबल कर गए हैं,
$36 पर शेयर,
यस, तो वो नीचे आ गए हैं सारे, तो ऐसे है। अच्छा भाई, ये भी आपने थोड़ी सी खबर बताई है अभी, ये जो बोरिस जॉनसन है यूके के प्राइम मिनिस्टर, ये इनका आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था वहां पे पार्लियामेंट के अंदर। असल में ये जो पिछले दिनों में आपको पता ही है, हम आपको सारी खबरें बताते रहे हैं कि ये जो पार्टी गेट स्कैंडल चल रहा था जिसके के ऊपर ये और इनकी जो कैबिनेट के मेंबर्स थे कॉन्स्टेंटली पार्टी कर रहे थे और बाकी कौम को कह रहे थे कि नहीं कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शन जो है तुम लोग फॉलो करो, और खुद ये फॉलो नहीं कर रहे थे। अच्छा, ये जो इनके टोटल कंजर्वेटिव सीट्स हैं पार्लियामेंट में वो हैं 259 में से वैसे तो इनको 180 वोट्स चाहिए थे लेकिन इनको मिले 211। लेकिन फिर भी जो ग्लेरिंग बात है इसके अंदर कि 148 जो कंजर्वेटिव लॉ मेकर्स हैं, दैट इज अ ह्यूज नंबर, अभी भी दे आर अगेंस्ट हिम।
अगेंस्ट शाजी जी, द सरप्राइजिंग पार्ट इज दैट 148 ऑफ देम आर फ्रॉम एमपीज ऑफ टोरीज।
जी, तो ये यही कंसर्न है, यही कंसर्न है कि 148 कंजर्वेटिव एमपीज अभी भी अगेंस्ट हैं इनके। तो अगर ये इन्होंने जीत भी लिया है, लेकिन अब वो सारे क्रिटिक्स कह रहे हैं कि इनके डेज नंबर्ड ही हैं अब तो, लेकिन वो कहते हैं जी बड़े कंजर्वेटिव, बड़े करिज्मेटिक पर्सनालिटी
है। आई डोंट थिंक ही इज गोना गो एनीवे, बिकॉज इसके बाद कोई इनको कह नहीं सकता कि आप दोबारा से रेफरेंडम कराओ या दोबारा से आप वोटिंग कराएं या कुछ कराएं, क्योंकि दिस इज इट।
मजद भाई पाकिस्तान से इम्प्रेस होके वो हॉर्स ट्रेडिंग करवा लें, देखिए ना अपने साथ बंदे शंदे मिला लें और फिर कहें ये नहीं हमको चाहिए।
आप ये नहीं समझती कि इसमें बंदे मिले होंगे?
हाँ मिले होंगे लेकिन हो सकता है ज्यादा मिल जाए, है ना,
देख ले
अब ये होगा। तो बहरहाल वो कहते हैं जी ये ज्यादा अब इसके दिन नहीं है, हालांकि ये बड़ी करिज्मेटिक पर्सनालिटी है और बड़ा ये जाके बड़ी जबरदस्त स्पीचेस करता था और ये जो थी कंजर्वेटिव पार्टी बिल्कुल ही बस थक हार रही थी, लेकिन इसने फिर से उनको यूनाइट किया और फिर बड़ा जितनी बड़ी मैसिव विक्ट्री लेके आया था ये उसके अंदर, लेकिन अब इसकी पॉपुलैरिटी ढुंडल होती जा रही है।
क्योंकि आप देखें जब ये क्वीन का, हमारी क्वीन का जब प्लैटिनम वो हो रहा था जुबली का
सेलिब्रेशन,
उसमें जब बोरिस जॉनसन साहब वहां पर आए तो लोगों ने बू किया
बहुत ज्यादा, या
पॉपुलैरिटी फ्रॉम देयर,
या बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं कि अब इनके ज्यादा दिन नहीं है यहाँ पे। अच्छा जी, आरफा बाजी ने ये थोड़ी सी टच की है खबर, तो हम आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल्स दे देते हैं। हुआ क्या है इंडिया के अंदर, क्या हुआ है कि दो जो बीजेपी के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने, अब मैं वो वर्ड्स नहीं रिपीट करूंगी जो उन्होंने अपने प्रोग्राम्स के बीच में नाउज बिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है बड़ी गुस्ताखी की, और उनको रिपीट नहीं करना चाहिए और मैं करूंगी भी नहीं। तो वो अगर आपने प्रोग्राम देखा है तो आप समझ ही रहे होंगे कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूं। और उन्होंने ये सारी जो डिस्कशन थी ये चल रही थी वही जो ज्ञान व्यापी जो मस्जिद है और बाकी की जो मस्जिदें हैं और उसमें हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में ये चल रही थी। अच्छा जी, उसके अंदर ये जो इनके दो ऑफिशियल्स हैं, एक तो नूपुर शर्मा और एक नवीन जिंदल, उन्होंने ऐसी बात की कि अब दुनिया भड़क गई उसके ऊपर, खासतौर पे मुस्लिम वर्ल्ड। तो बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज ने, यूएई, कतर, बहरेन, यूएई, सऊदी अरेबिया, इन सब ने कहा कि ये जो कुछ भी हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है और इसको जो है खत्म करने की जो है वो जरूरत है। ये खामखाई एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी 2014 में मोदी जी की जो आई है उसकी वजह बाद से जो है मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज्यादा जो है वो मोर्चे भी निकाले जा रहे हैं और उनको जो है बिल्कुल दीवार से लगाया जा रहा है। अच्छा, इसमें जो हुआ क्या है बेसिकली कि इन कंट्रीज ने तो बहुत ज्यादा कंडेम किया ही और इंडियन एम्बेसडर्स को बुलाया और उनको कहा कि भाई तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है। ओआईसी जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल जो है, उसने भी जो है वो बुलाया इनको और जो है जो इंडियन ऑफिशियल्स जो है उनके नोटिस में ये वो बात लेकर आए। उन्होंने कहा जी कि ये जो कमेंट्स हमारे प्रॉफिट के बारे में किए हैं, पीस बी अपॉन हिम, वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल हैं और ये जो है एक सिस्टमैटिक प्रैक्टिस अब आपके मुल्क में मुसलमानों के अगेंस्ट चल रही है। अच्छा जी, इंडिया की जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने इसका जवाब दिया बड़े मुअद्दबाना तरीके से, और वो मुअद्दबाना मैंने वर्ड क्यों यूज किया क्योंकि आगे जाके मैं आपको बताऊंगी और क्या हुआ है। मुअद्दबाना तरीके से उन्होंने कहा जी कि आपके ये जो कमेंट्स हैं ये अनकॉल्ड फॉर हैं क्योंकि ये कमेंट्स जो हैं फ्रिंज एलिमेंट्स ने दिए हैं। उसके ऊपर रिएक्शन फर्दर फिर आया कि ये फ्रिंज एलिमेंट्स कैसे हैं, ये फ्रिंज एलिमेंट्स नहीं है, ये तो बीजेपी के हिस्सा है। तो अच्छा, उसके ऊपर फिर से उन्होंने वजाहत देते हुए कहा कि चूंकि इन्होंने गलत बात की थी और हिंदुस्तान या कि बीजेपी की जो पार्टी है वो इस तरह की कोई जो डिसहार्मनी की बात करता है सोसाइटी में उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं, एज अ रिजल्ट हमने इनको फौरन निकाल दिया है अपनी पार्टी से। उस पे कतर ने कहा कि हम हिंदुस्तान को कहते हैं कि इनकी गवर्नमेंट एक पब्लिक अपॉलोजी डाले, अगर आपने नहीं डाली तो हम ये आपका जो एक्शन है इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा अरब कंट्रीज के अंदर ये अब कहा गया है कि भई ये जितने भी इंडियन जो सामान है इसका आप बॉयकॉट करें। अच्छा, इसके साथ साथ क्या हुआ है कि जो ग्रैंड मुफ्ती ऑफ उमान हैं उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ हो रहा है ये वॉर की तरफ जा रहा है, जो मोदी जी की गवर्नमेंट के अंडर हो रहा है ये वॉर की तरफ जा रहा है। अल अजहर यूनिवर्सिटी और मॉस्क जो है उसने कहा है कि ये दिस इज रियल टेररिज्म जिसके के अंदर जो है ये इंडिया आता जा रहा है और ये बड़ी ही खतरनाक चीज है बिकॉज दीज थिंग्स लीड टू डेडली वॉर्स। जॉर्डन ने भी बहुत ज्यादा इसको कंडेम किया। अच्छा, जहां अरब कंट्रीज को बड़े प्यार से हिंदुस्तान ने जवाब दिया कि जी हम उसके ऊपर हमने एक्शन भी लिया है और हम जो है बड़ा उसके ऊपर डिपेंड, हमारी ह्यूमन राइट्स भी बड़ी अच्छी हैं और हम फेथ बेस्ड जो हैं वो कम्युनिटीज को फ्लरिश होने का मौका देते हैं, क्योंकि उसकी वजह क्या है, उसकी वजह हम आपको बता देते हैं कि हिंदुस्तान की जो ट्रेड है ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स में स्टैंड करती है और ये इनके साथ जो अरब कंट्रीज हैं उनके साथ, और इसी तरह हजारों ही मिलियंस ऑफ पीपल जो इंडियंस हैं वो अरब कंट्रीज के अंदर जो हैं वो काम करते हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स के वो रेमिटेंसेस भेजते हैं इंडिया को। तो इसलिए हिंदुस्तान जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता अरब कंट्रीज के साथ बिगाड़ना। अच्छा, अब उनको तो ये जवाब दिया जिस वक्त, क्योंकि वैसे हम आपको बता दें कि 14% जो है पॉपुलेशन है इंडिया की मुसलमानों की, इंडिया में मुसलमानों की, जो कि कंसिडर की जाती है कि विच इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी इतनी बड़ी पॉपुलेशन मुस्लिम कंट्रीज में भी मुसलमानों की नहीं है जितनी नहीं। अच्छा, अब जबकि पाकिस्तान ने इसके ऊपर रिएक्शन शो किया, पाकिस्तान के फॉरन मिनिस्टर ने इंडियन डिप्लोमैट को बुलाया और उन्होंने कहा जी कि हम अब बड़ा स्ट्रांगेस्ट वर्ड्स में इसको कंडेम करते हैं जो आपने प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम उनके खिलाफ आपके ऑफिशियल्स ने बातें की, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये बहुत ही हर्टफुल किस्म का ये कमेंट्स हैं और चीजें हैं और ये मुसलमानों की प्रोसिक्यूशन और जो उनकी रिलीजियस फ्रीडम्स हैं उनके ऊपर ट्रैम्पल करने की कोशिश की है। अच्छा जी, इसके ऊपर तो हिंदुस्तान भड़क गया उसने कहा जी तुम अपने खुद के मामलात जो हैं उनको देखो, हमारे मुल्क में तो ह्यूमन राइट्स को बहुत ज्यादा जो है वो सहायता दी जाती है, तुम्हारे मुल्क में ह्यूमन राइट्स की जो है ऐसी तैसी भेजी जाती है, तो तुम जो है हमें सबक देने की, पाकिस्तान को कहा तुम हमें सबक देने की कोशिश ना करो, तुम अपने मुल्क के जो है मामलात को दुरुस्त करो। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह उन्होंने कहा जी कि ये जो तुम प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हो ना, पाकिस्तान को कहा कि ये जो तुम हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हो, डिसहार्मनी हमारे मुल्क में पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, तुम अपने मुल्क के ऊपर जरा थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लो। अच्छा जी, इसी तरह फिर उसके बाद अफगानिस्तान ने भी किया, तो उसके ऊपर भी इंडियन गवर्नमेंट ने कोई ऐसा रिएक्शन नहीं शो किया। तो अब भाई पाकिस्तान के खिलाफ आपने इतना रिएक्शन क्यों शो किया, दैट इज अवर क्वेश्चन जी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ आपकी वैसी ट्रेड नहीं है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे है। ठीक है जी, तो जनाब ऐसे है, तो ये हुआ। अच्छा, अब जब ये सारा मसला चला तो राहुल गांधी जो हैं वो बड़ा भड़क गए। राहुल गांधी भी, उन्होंने कहा कि जिस दिन से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है उस दिन से इस मुल्क के जो हैं मामलात खराब हैं, और इस मुल्क के अंदर जो है कॉन्स्टेंटली एक जो सेक्टर है उसको टारगेट किया जा रहा है, और अगर हिंदुस्तान को प्रोग्रेस के पाथ पे चलना है तो उसको लव, ब्रदरहुड, हार्मनी का मैसेज देना पड़ेगा। जो इंटरनल हमारी रिफ्ट्स थी वो तो थी, अब डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी फॉल आउट इंडिया का शुरू हो गया है, और ये लोग जिनको आपने नाराज किया है ये तो जो थे इंडिया के बहुत ही मतलब है लॉन्ग टर्म एलाइज थे, और ये बीजेपी की शेमफुल बिगट्री जो है ये जो इंडिया का जो ग्लोबल स्टैंडिंग है उसको ये डैमेज करेगी। क्योंकि इसके ऊपर हमने आपको भी बताया ही है कि कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, ये सब जो हैं इन्होंने बहुत ज्यादा रिएक्शन शो किया था। तो गांधी जी ने कहा कि 87 बिलियन यूएस डॉलर्स की ट्रेड है इंडिया की अरब कंट्रीज के साथ, तो इसको कहीं ऐसा ना होए कि ये डैमेज हो जाए। तो बहुत ज्यादा उन्होंने आज जो है बीजेपी की गवर्नमेंट को किया जी खींचा है जी, ऐसे है, तो काफी भड़के हुए हैं लोग, तो अब देखेंगे आगे क्या होता है। बहरहाल जी, होता तो कुछ भी नहीं है, बोल बाल के चुप कर जाते हैं और फिर जो है वो ट्रेड शुरू कर देते हैं इंडिया के साथ। अच्छा जनाब, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट है, और आज जून 6 को 38th एनिवर्सरी थी ऑपरेशन ब्लू स्टार की। अगर आपको पता हो कि एक खालिस्तान की मूवमेंट चली थी पंजाब के अंदर, कि जिसमें कहा गया था कि जी पार्टीशन के वक्त हमको कहा था हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने कि आप हमको एक अलहदा अपना इलाका देंगे, लेकिन आपने दिया नहीं, उसके ऊपर कुछ लोग खड़े हो गए थे, और फिर ये बहुत जो है इंडियन गवर्नमेंट ने इसको खत्म किया था, और गोल्डन टेम्पल के अंदर फिर कुछ लोग जाके बैठ गए थे और फिर काफी लड़ाई हुई। अगर आपको पता है हिस्ट्रीज की ऑपरेशन ब्लू स्टार की, तो वो आज जनाब वहां पे आज उसकी एनिवर्सरी 38th एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, तो वहां पे अकाल दख्त के जत्थेदार थे और बहुत से और भी लोग थे जो कि प्रो खालिस्तानी स्लोगन्स जो है रेज कर रहे थे खालिस्तान जिंदाबाद के, और वहां पे इन्होंने जो है अकाल दख्त के जत्थेदारों ने कहा कि सिखों को ट्रेडिशनल ट्रेनिंग देने की जरूरत है और उनको अपने पास मॉडर्न आर्म्स जो है वो चलाने आने चाहिए, उनके पास होना चाहिए। उनकी जो आज टी शर्ट्स भी उन्होंने पहनी हुई थी, इनके जो लीडर थे जिनको के मार दिया गया था जरनैल सिंह भिंडरा वाले, उनकी पिक्चर्स थी उसके ऊपर, और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है उसने वो आज स्वरूप वो दिखाया, वो जो आपको पता है ना वो होली वॉल्यूम एक जो गुरु ग्रंथ साहब का है जिसको के गोलियां लगी थी, वो आज दिखाया कि जिसको 1984 में बहुत ज्यादा मिलिट्री के एक्शन के बीच में आके गोलियां लगी थी वो दिखाया गया। तो यहां पे जो ज्ञानी हरप्रीत सिंह हैं अकाल तख्त के जत्थेदार, उन्होंने कहा जी कि पंजाब के अंदर मेरे बहुत सारे कंसर्न्स हैं कि बहुत ज्यादा मस्जिदें और चर्च बनते जा रहे हैं, और यहां पे जो है ये सिखी को खत्म करने की एक कोशिश की जा रही है, तो जितने भी सिख यूथ है इनको चाहिए कि अब ये सिख फेथ को जो है आगे बढ़ाएं और गांव-गांव में जाएं और जाके सिखी को बढ़ाएं और अपने रिलीजन जो है इसको मजबूत करें। पाकिस्तान के अंदर जो जी फाइनेंस मिनिस्टर है, अगेन उनका क्या नाम है, फिर मैं गलत बोलूंगी, फिर आपके मिफ्ते इस्माइल जो हैं, उन्होंने कहा जी कि ये वीकेंड के ऊपर कुछ खबरें आ रही थी कि मुल्क के अंदर इमरजेंसी लगाई जाएगी, कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी मुल्क के अंदर नहीं है, पेट्रोल की क्राइसिस जो है प्राइसेस हालांकि दो दफा ऊपर की जा चुकी हैं और अब वो जो है 209.86 को हिट कर रही हैं, और उन्होंने इसके अलावा जो है पेट्रोलियम की प्राइसेस भी बहुत ऊपर चली गई हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जी कि पीएम साहब जो हैं शहबाज शरीफ वो कुछ दिनों में ऑस्टेरिटी मेजर्स जो हैं वो अनाउंस करेंगे, और हमको ये सब इसलिए करना पड़ा है क्योंकि IMF का प्रोग्राम हमको लेना था, तो इसलिए प्राइसेस जो हैं ये इतनी ज्यादा ऊपर की हैं। इसके अलावा जो नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भी प्राइसेस जो हैं वो 9.9078 पर किलो वॉट के हिसाब से ऊपर की हैं। और ओग्रा ने जो है वो भी गैस की प्राइसेस को 45% फॉर नॉर्दर्न गैस ऊपर करने के लिए कहा है, 44% सुई सदर्न गैस को जो है कहा है प्राइसेस ऊपर करने के लिए। लेकिन मुफ्ती इस्माइल साहब का कहना है कि कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं है मुल्क के अंदर। ठीक है जी, आमिर साहब जरा थोड़ी सी वो एक स्लाइड हमें दिखाओ जो कि ये सारे बाहर आए थे और उन्होंने कहा था जी मुल्क के अंदर बड़ा तूफान मच गया है और बड़ी महंगाइयां हो गई हैं। तो इमरान खान के जमाने में जो पिछली गवर्नमेंट के जमाने में वो जो चल रहे थे किस किस जगह पे टेक्सटाइल खड़ी थी, किस जगह पे जीडीपी था, वो जरा थोड़ी सी दिखाएं जरा। ये आईएमएफ की सारी वो आई थी बहुत सारी डिटेल्स, तो अगर आप हमें दिखाएं वो स्लाइड्स तो ये देखें जी, पाकिस्तान की मीट प्रोसेसर जो है वो 2.2 मिलियन जो है एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स आए थे मिडल ईस्ट से, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ था। कभी इतने ज्यादा 2.2 मिलियन यूएस डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कभी नहीं हुए थे। अच्छा जी दिखाते जाएं आमिर। अच्छा उसके बाद ये जो फर्स्ट एवर एजुकेशन सिटी जो साउथ वजीरिस्तान में बनाया गया था ये बिल्कुल अनथिंकेबल था, क्योंकि आपको पता है यहां पे कॉन्स्टेंटली लड़ाई हो रही थी और यहां पे जो था बच्चे बगैर एजुकेशन के फिर रहे थे। तो यहां पे गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, यहां पे एजुकेशन जोन्स जो है हमको एस्टैब्लिश करने की जरूरत है, जो कि की गई थी, जिनको कहा गया था कि इन बच्चों को मेन स्ट्रीम के अंदर आप लेकर आए। अच्छा जी इसको खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स टू यूएस 40.27% जो है उससे ऊपर गई थी और 5 बिलियन को 9 मंथ्स में जो फिस्कल लास्ट ईयर था उसको वो टच कर रही थी, जो कि अब जाहिर है कि अब हौले हौले जो है अब नीचे आएंगी। तो ये भी पहली दफा हुआ था। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा क्लाइमेट का जो मसला पैदा हो गया था सारी दुनिया में, उसमें ये जो बिलियन ट्रीज लगाए थे उसकी वजह से फॉर द फर्स्ट टाइम ऑलिव जो है ऑलिव्स होने यहां पे शुरू हो गए थे। हालांकि आपको पता है कि ऑलिव्स जो है दे आर स्पेसिफिक टू द अरब कंट्रीज, वो सिर्फ अरब कंट्रीज में ये ऑलिव्स होते थे, लेकिन यहां पे वो इतने उन्होंने ट्रीज और वो लगाए कि यहां पे जो इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल थी उसने कहा कि आपके मुल्क में एक्चुअली ऑलिव्स हो सकते हैं तो इन ट्रीज में। इसके अलावा जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर था जी, 6 बिलियन यूएस डॉलर के फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो थी इसके अंदर 4 साल में के अंदर आई थी, और बहुत सारे हम आपको बताते ही रहते हैं कि यंगस्टर्स जो थे इसमें शामिल हो गए थे। पाकिस्तान ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग के तमाम रिकॉर्ड्स जो थे वो सारे ब्रेक किए थे। उसकी वजह यह थी कि जब कोविड आया था तो बहुत सारे ऑर्डर्स जो कि बांग्लादेश को दिए गए थे उनकी जो कारखाने थे वो पूरा नहीं कर सकते थे, तो पाकिस्तान के कारखानों को इतना ज्यादा काम मिल गया था कि सिर खुजाने की यहां पे लोगों के पास फुर्सत नहीं थी। खासतौर पे ये बड़े जो सिटीज थे जो इंडस्ट्रियल सिटीज हैं फैसलाबाद एंड कराची, और लार्ज स्केल यहां पे मैन्युफैक्चरिंग थी और 3-3 शिफ्टों में यहां पे लोग जो हैं वो काम कर रहे थे, एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगेन वॉज हिटिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अच्छा जनाब उसके अलावा पाकिस्तान ने 7.16 मिलियन फोन्स जो हैं फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ 2022 में ये बनाए थे। आप सोचें जरा कि इतनी ज्यादा ये जो है डिजिटल जो इकोनॉमी है उसके अंदर पैसा जो आ रहा था उसके अंदर मोबाइल फोन्स का कितना बड़ा हिस्सा है। आप देखें कि मोबाइल फोन्स, इसके अलावा पाकिस्तान ने अपनी जो कार कंपनीज हैं उन्होंने ये देखें 4 बिलियन रुपीज के जो अंडर न्यू ऑटो पॉलिसी जिसके के अंदर इनको बहुत सारी सहूलतें दी गई थी वो इन कंपनीज ने जो थे वो कस्टमर्स को रीपे किए थे। और ये आप देखें कि इसके अंदर और भी जो हम आपको बताते रहे थे कि नई नई कंपनियां जो वो भी आ रही हैं, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान की फर्स्ट लोकली असेंबल्ड व्हीकल जो है वो भी सामने आ रही है। तो ये था। और इसके अलावा जो है हमारी जो पाकिस्तान ने 1.9 बिलियन यूएस डॉलर के आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट किए थे, जिसमें कि ये हमारे सारे यंगस्टर जिनके बारे में हम बार बार बताते हैं और उनको साहब को मजा था, हमने वैसे बहुत कहा ये जो डिजिटल इकोनॉमी चलाते थे ना इमरान खान की कि आप आओ तो बस वो कहते हैं कि नहीं मेरा दिल बहुत टूट गया मैं नहीं आना चाहता, वरना वो आपको बताते एक्चुअली कि उन्होंने आईटी के सेक्टर में पाकिस्तान में क्या काम किया। जबकि इमरान खान आए थे तो उन्होंने कहा था कि आईटी में हम बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। तो ये था। और ये देखें रीजनल एक्सपोर्ट्स जो है हमारी 23.5% से राइज की थी और इन 9 मंथ्स हमने पाकिस्तान ने 3.4 बिलियन यूएस डॉलर्स कमाए थे। तो ये जी सारा कुछ जो था ये चल रहा था। बहरहाल जी अब ये सारा सिस्टम अब डीरेल चुके हो चुका है तो अब जाहिर है इसको और फिर चलने में ट्रैक पे आने पे अब काफी टाइम लगेगा। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं जी उन्होंने कहा जी कि उन्होंने बड़ा ही एक इनोवेटिव तरीका बताया है। उन्होंने कहा है कि काम कम करो, अगर आपकी ऑयल की प्राइसेस बहुत बढ़ गई है ना तो काम कम करो, काम कम करो, गाड़ी कम चलेगी, पेट्रोल कम खर्च होएगा, ठीक है जी। उन्होंने कहा है जी कि स्टार्टिंग फ्रॉम हाफ डे फ्रॉम फ्राइडे सैटरडे संडे जो है आप हाफ डे फ्राइडे काम करें और सैटरडे संडे को आप छुट्टी करें, तो 4.5 दिन जब आप काम करेंगे तो आपकी जो है पेट्रोल बहुत बचेगी, ठीक है जी। तो ये इन्होंने जी प्रपोजल दी है।
तो वही बात होगी ना कि खाना अगर महंगा हो गया तो तीन
ना खाएं, दो वक्त खाएं हाँ, दो वक्त खाएं, दबा के खाएं, लेकिन दो वक्त खाएं
आप, तो आपके ग्रोसरी के बिल
कम हो जाएगा। तो वो कहते हैं जी हाँ, मैं ये भी कहता हूँ चलो एक घंटा और बढ़ा लो, तो लेकिन यानी कि आप 8 घंटे करते हैं, आप 9 घंटे कर लें, पायान लोग तो 14-14 घंटे काम कर रहे हैं जिनके अपने बिजनेसेस भी हैं दिन में, तो आप कह रहे हैं 1 घंटा बढ़ा लें यानी 9 घंटे कर लें, तो फिर आप समझते हैं मुल्क बड़ा तरक्की करेगा। वाह जी वाह, क्या बात है, यानी पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो लंगर खाने फिर आपने जो है वो कैसे चल रहे थे, ये वजीरस्तान टाइप की जगहों के ऊपर ये कैसे स्कूल चल रहे थे, ये कैसे जो है वो सारी ये चल रही थी, वो जो लोगों को जो गरीब घरों को 14,000 रुपीज दिए जाते थे, सेहत स्कीम कैसे चल रही थी, स्कॉलरशिप्स कैसे चल रहे थे, अगर मुल्क में पैसा ही नहीं था। आपने तो सबसे पहला काम ये किया, आपने तो ये गरीबों की सारी चीजें आते सारी बंद कर दी हैं। अनाउंस क्या किया, मुझे तो इतनी हंसी आई, वो तो अभी मैंने खबर इधर बताई नहीं है कि हम जी जो गरीब जो फैमिलीज हैं उनको हम 2,000 रुपीज जो है पर मंथ देंगे। और भाई प्रीवियस गवर्नमेंट 14,000 रुपए दे रही थी, तो आप क्या तीर मार रहे हैं हम 2,000 देंगे, मतलब व्हाट अ जोक इन दिस, यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस कंट्री, एंड नोबडी, देयर आर नो चेक्स एंड बैलेंसेस। मुझे समझ नहीं आता कि कोई इनके कोई पूछने वाला है इनको कि नहीं है,
नहीं
कि भाई साहब क्या आप कर रहे हो। अच्छा जी, आज जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा थे वो आज नस्ट के अंदर एड्रेस कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई ये जो आप बिला वजह नेशनल स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम को हर कोई आके एतराज उसके ऊपर करता जाता है, ये अननेसेसरी कमेंट्स ना दें, पाकिस्तान जो है वो कोई भी अपनी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है और ये जो इसका फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस पॉलिसी है के ऊपर बिलीव करता है। तो इसलिए मैं लोगों को कहता हूं कि जिनका ताल्लुक नहीं है इस चीज के साथ उसके जो इसके ऊपर कॉमेंट ना करें और बिला वजह की हीट जो है वो जनरेट ना करें। गवर्नमेंट जो है जी पाकिस्तान की वो कह रही है कि हम चूंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है तो हम आप सोच रहे हैं कि आपको हम 3 ऑप्शन हैं हमारे पास के गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तनख्वाहें जो हैं बढ़ानी चाहिए 5 से लेके 15% तक, वो जो अपकमिंग बजट है उसके अंदर वो कहते हैं कि हम जो हैं 25,000 तक ये सैलरीज बढ़ाना चाहते हैं, Grade 1 से 9 को 5 to 10%, Grade 20 से 22 को 10 to 15% और पेंशन जो हैं उनको भी 5 to 10% जो है वो बढ़ाया जाएगा। शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है जी, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इस्लामाबाद के अंदर अपने बाकी दूसरे PMLN के लीडर्स के साथ और उन्होंने कहा है जी कि लोड शेडिंग जो है अब कल से सिर्फ 3.5 घंटे पर डे रह जाएगी और ये जो बिजली का शॉर्टफॉल था PTI इसकी जो है रिस्पॉन्सिबल है। हम जो है डिमांड एक्सीड हमारे मुल्क में कर गई 25,000 मेगावाट से और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो थी 17,000 मेगावाट हो रही थी, तो अब हमको नेक्स्ट 3 वीक्स में हम 21,000 मेगावाट को टच करेंगे और हमने ऑयल भी इंतजाम कर लिया और एडिशनल मनी भी और हम कोल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से अब आने वाले दिनों में June 30th के बाद ये सिर्फ जो है 1.5 से 2 घंटे की रह जाएगी। आमिर साहब ये जरा दिखाएं हमारा वो एक अखबार की कटिंग दिखाएं, ये पाकिस्तान में कब से लीडर्स कह रहे हैं कि भाई ये जो लोड शेडिंग है ये खत्म हो जाएगी, ये जरा हमारी मेरे ख्याल में 1986 की डॉन की कटिंग है, ये जरा डॉन की कटिंग दिखाएं। तो अच्छा ठीक है, अभी हमारे पास नहीं है, वो निकालते हैं आमिर, तो हम आपको दिखाते हैं ये 1986 से जो वो महबूबुल हक साहब थे ना जी, उस जमाने से ये कह रहे थे हमने बिल्कुल जो है ये खत्म कर देनी है लोड शेडिंग इस मुल्क से। तो अब ये देखें लोड शेडिंग प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व बाय 1986 है जी। okay. ये डॉन न्यूज की ये एक कटिंग है, तो अब आप देख लें कि ये उस जमाने से ये सारे लीडर हजरात जो हैं ये बार बार कहते जा रहे हैं। और एनीवेज अच्छा जी, ये PTI ने अनाउंस किया है इनके डिफरेंट जो लीडर्स हजरात हैं, एक तो शेख रशीद अहमद जो कि इंटीरियर मिनिस्टर थे पिछली गवर्नमेंट में, इसके अलावा चौधरी फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने भी और भी कुछ जो हैं जो PTI के लीडर्स हैं उन्होंने कहा है जी कि इमरान खान साहब जो कि आज़ादी मार्च के बाद अभी तक पिशावर में बैठे हुए थे वो बनीगाला वापस आ रहे हैं क्योंकि वहां पर कोर कमेटी का मीटिंग होने वाली है, तो उसके ऊपर जो है राणा सनाउल्लाह ने कहा जी आया नू आओ, ये जो सारी जो सिक्योरिटी आपके हमने घर पे लगाई हुई थी अब यही सारी सिक्योरिटी जो है आपको अरेस्ट करने के ऊपर लगाई जाएगी जैसे ही आपकी जो है बेल खत्म हो जाएगी, और क्योंकि आपके ऊपर 2 डजन केसेस हैं सेडिशन के राइटिंग के स्प्रेडिंग केओस एंड आर्म्ड अटैक ऑन फेडरेशन. हाँ जी, तो ये आपके ऊपर सारे चार्जेस हैं, तो आप आओ तो फिर हम आपको जो है वो पकड़ेंगे, तो आप जी देखेंगे क्या होता है. अच्छा, इसके ऊपर तो जी जाहिर है कि लोग बड़ा भड़क गए हैं. कुछ लोगों ने कहा कि अगर आपने उसका बाल भी बांका किया तो हम सुसाइड बॉम्बिंग शुरू कर देंगे और पता नहीं क्या क्या कुछ. तो ये तो बड़ी खतरे में नाक बात है. अच्छा जी, सिद्धू मूसेवाले का जो डेथ है वो तो अब हर रोज नया 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 ही रुख देखती जा रही है. जो बड़े मशहूर पंजाबी सिंगर थे, जो हमने को बताया था, 27 ईयर्स एज एंड वेरी सैड, माँ बाप का एक ही एक बच्चा था और गैंगस्टर्स ने आके इसको गोली मार दी थी. अब एक सीसीटीवी जो है May 29 की वो सामने आई है और उसमें देखा जा रहा है कि एक लड़का, एक गैंगस्टर जिसका नाम केकड़ा है, वो केकड़ा जो है अपने एक साथी के साथ आया हुआ था और वो इसकी पार्टी में आके इसके घर पे बल्कि आया हुआ था और 45 मिनट्स तक इसके घर में रहा, सेल्फीज लेता रहा. तो इसने अलेजली, पुलिस कहती है कि इन्फॉर्म किया शूटर्स को कि ये मूसेवाला जो है अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में भी नहीं आ रहा, थर लेके आ रहा है और अपने साथ गनमैन भी नहीं ला रहा है. तो इसको पुलिस कहती है जी कि इस केकड़े को हमने कलन वाली टाउन हरियाणा से जो है हमने किया है, क्योंकि इसने फैसिलिटेट किया उनको सारों को जिन्होंने सिद्धू मूसेवाले को मारा. महाराष्ट्र होम अफेयर्स के जो डिपार्टमेंट है जी, उन्होंने सलमान खान की अब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि हमने आपको वीकेंड में बताया था कि जसेम बिश्नोई ग्रुप जो है उसने एक दफा जो है सलमान खान को धमकी दी थी कि भई हम आपको मार सकते हैं. तो अब क्या हुआ है कि इनके वालिद साहब जो सलीम खान है, वो एक जो पार्क है वहां पे जाते हैं, बांद्रा में बस स्टैंड के पास है, तो वहां पे ये जाते हैं करने के लिए मॉर्निंग वॉक. तो वहां पे जिस बेंच पे बैठते हैं, एक पर्टिकुलर बेंच है, वहां पे उनको एक लेटर मिला कि तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मार दिया जाएगा. तो ये उन्होंने जी खत फिर दिया पुलिस वालों को. तो अब पुलिस ने सलमान खान जो है उसकी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है. इसके अलावा इनके भाई अरबाज और सुहेल खान जो है वो भी देखे गए इसके घर के बाहर. और सलमान जो है आईफा अवार्ड्स के लिए गए हुए थे अबू धाबी, तो अब जब वो आए हैं तो अब उनको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी दी जा रही है. एंड जनाब, एतिहाद अरीना यस आइलैंड अबू धाबी के अंदर आईफा अवार्ड्स हुए 2022. बड़ा ही ग्लैमरस इवेंट था और हमारे जो बॉलीवुड के भाईजान है यानी कि सल्लू भाई, उन्होंने जनाब इसको वो किया, होस्टिंग की इसकी, और इनके साथ थे रितेश देशमुख और मनीष पॉल. और बड़ा ही जबरदस्त, ये देखें जरा आप, ये जो एरिना है वहां पे, ये जो एतिहाद एरिना है यास आइलैंड का, ये यहां पे ये थी. और इसके अंदर जो है बहुत सारे जो अवार्ड्स दिए गए, कुछ के हम आपको बता देते हैं. एक तो बेस्ट फिल्म कैटेगरी अवार्ड जो थी, उसके अंदर हीरो यश चोपड़ा, करण जौहर, पूर्वा मेहता और शब्बीर बॉक्स वाला, अजय शाह, हिमांशु गांधी को शेरशाह के लिए दिया गया. बेस्ट डायरेक्शन कैटेगरी के अंदर विष्णु वराधन को शेरशाह के लिए दिया गया. बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल, कृति सैनन को मिमी के लिए. म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान फॉर अतरंगी रे, तनिष भागी, जसलीन रॉयल, जावेद मोहसिन, विक्रम मोंतेसर और जानी जो है इनको शेरशाह के लिए म्यूजिक डायरेक्शन में दिया गया. प्लेबैक सिंगर फीमेल अनीस कौर को रातां लंबियां के लिए, और प्लेबैक सिंगर मेल जूबियन नौटियाल को भी रातां लंबियां के लिए. बेस्ट स्टोरी अनुराग बासु लड्डू, बेस्ट स्टोरी अडॉप्टेड कबीर खान, और बेस्ट डायरेक्टर डेब्यू फीमेल जो है ये शिवांगी वागी फॉर बंटी और बबली, और बेस्ट डेब्यू मेल जो है वो आहान शेठी तड़प टू के लिए. तो जनाब ये बड़ा जबरदस्त रंगारंग प्रोग्राम जो है ये अबू धाबी के अंदर हुआ. और जनाब एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि बैड इन अ बैड टेस्ट, दिस एड वॉज क्रिएटेड इन अ बैड टेस्ट. एक बॉडी स्प्रे है शॉट इंडिया के अंदर, उसका एड दिखा रहे थे कि एक लड़की सामने सुपरमार्केट में खड़ी हुई है, वो कुछ खरीद रही है और उसके पीछे चार लड़के खड़े हुए हैं. वो कहते हैं ये तो हम चार हैं और ये एक ही है, तो ये शॉट कौन लेगा. तो इसके अंदर दुनिया बड़ी भड़क गई है इंडिया में. वो कह रहे हैं कि ये आप रेप को बढ़ावा दे रहे हैं. हालांकि वो लड़की एकदम से जब मुड़ती है तो पीछे वो लड़के जो है वो उसको परफ्यूम को उठाते हैं जिसकी एक ही बॉटल रह गई है. लेकिन वो चूंकि लड़की है और वो झुकी हुई थी और उसके ऊपर ये उन्होंने, तो ये इस पे काफी बॉलीवुड के भी जो सितारे हैं, प्रियंका चोपड़ा, ऋचा चड्ढा, फरहान खान, और ये सारे बहुत भड़क गए. उन्होंने कहा जी कि ये इंतहाई डिस्गस्टिंग और शेमफुल है. उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ ये एड एक हफ्ते बाद, जो हमने लास्ट वीक आपको बताया था कि एक 17 साल की बच्ची जिसको कि मर्सिडीज गाड़ी के अंदर 5 लड़कों ने गैंग रेप किया था, उसके फौरन बाद ही ये एड आ गया. तो अब उन्होंने कहा कि ये इंतहाई बेहुदा है. तो बहरहाल जी इन्होंने दे हैव पुल्ड दिस एड ऑफ एयर और माफी भी मांगी है इसके क्रिएटर्स.
बट इन द मीन टाइम वो शॉर्ट को कितना पॉपुलैरिटी मिल गई.
मिल गई हाँ, बहुत पॉपुलैरिटी.
वो एड से इतना नहीं मिलेगी इतनी इस
कंट्रोवर्सी से मिल जाएगी.
कंट्रोवर्सी
या तो बस ये हुआ. अच्छा जनाब, रॉजर फेडरर के जो कोच हैं इवान जुबिक, उन्होंने कहा है कि यहां पे जब आपको पता ही है बड़े ये खुश हो गए थे 14th फ्रेंच ओपन जब इन्होंने फ्रांस में रोनाल्ड गैरोज में जीता है, सॉरी जो जो इन्होंने हैं तो ये रॉजर फेडरर के कोच, लेकिन ये राफेल नडाल ने जो जीता है 14th फ्रेंच ओपन, तो उसके ऊपर इन्होंने कहा कि ये जो आपका एरिना है यहां पे जहां पे कि ये मैच हुआ था उसका नाम है फिलिप कार्टियर, तो उसको चेंज करके आप राफेल नडाल जो है वो आप नाम रखें.
ठीक है, इससे तो, किसी ने नहीं जीते.
हाँ, किसी ने नहीं जीते. तो वो कहते हैं जी कि ये बहुत जबरदस्त इसका जो है, और इसी जगह पे वो कहते हैं इसी तारीख को इसी जगह पे इसने अपना पहला मेडन ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था. तो इसलिए जो है ये तो मतलब बड़ी हैरत लोगों को ही कि रॉजर फेडरर के ये कोच हैं और इन्होंने बात की है उसके लिए राफेल नडाल के लिए, तो बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया. लेकिन जाहिर है कि वो उसने भी जब
ये वैसे नडाल जो है उन्होंने तो मना कर दिया है कि वो मोस्ट प्रॉब्ली ही इज नॉट गोइंग टू प्ले विंबलडन.
हाँ हाँ, इसलिए क्योंकि उनको इंजरी आ गई है, फिर से इंजरी
के साथ साथ जो रशियन टेनिस प्लेयर्स के साथ जो उन्होंने सलूक किया है तो उसके बेस पे वो कहते हैं
हाँ, कि नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहते थे कि स्पोर्ट्स के अंदर ये सब नहीं होना चाहिए.
स्पोर्ट्स में ये सब चीज़
ये नहीं होना चाहिए. एंड जनाब, बड़े फटे चके जो रूट ने भी हमने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि उन्होंने कहा था कि अब मैं इंग्लैंड टीम का कैप्टन नहीं रहूंगा, मैं अपनी गेम पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूं. तो ये जो है न्यूजीलैंड के साथ इंग्लैंड के मैचेस हो रहे थे और जो फर्स्ट टेस्ट हुआ है उसके अंदर इन्होंने जी जो बनाए हैं 115 नॉट आउट, उसकी वजह से इंग्लैंड जीता है. और रूट जो है 14th बैट्समैन है और सेकेंड जो है ब्रिटिश प्लेयर हैं who has reached 10,000 test runs. तो ये इनकी 2600 थी, तो ये उसके ऊपर जी बड़े खुश हुए हैं. वर्ल्ड नंबर वन ईगा स्वीटेक जो कि सिर्फ अभी 21 ईयर्स की हैं, उन्होंने जनाब डिफीट किया है अमेरिकन टीनेजर, वो भी बड़ी छोटी सी हैं, कोको गॉफ जो कि 18 ईयर्स की है, उनको फ्रेंच ओपन में हराया है और अपना ये सेकेंड फ्रेंच ओपन जो है वो जीता है 3 साल के अंदर. एंड शी हैज बिकम नंबर वन, क्योंकि आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया की एश बार्टी जो थी उसने मार्च में अचानक से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था. शी हैज वन 35 कंसेक्यूटिव मैचेस and she had the longest unbeaten streak since Venus Williams in 2000. और हमारी जी बच्चियां भी कुछ पीछे नहीं है. आपको पता ही है कि श्रीलंका के साथ जो हमारी क्रिकेट टीम लड़कियों की खेल रही थी यहां पे साउथ एंड क्लब में कराची में, तो 2-1 से जो है ये जीती हैं. और आखिरी मैच जो था वो श्रीलंका के लिए कंसोलेशन रहा, क्योंकि आखिरी मैच वो जीत गई. इनकी कैप्टन जो है चमारा का अथा पटाटू, उन्होंने जो है बड़ा जबरदस्त 101 रन्स बनाए 85 बॉल्स पे. बहरहाल पाकिस्तान जो है 2-1 से ये सीरीज जीता. और अब पाकिस्तान जो है आईसीसी की, यानी ये मैं बात जरूर बताना चाहती हूँ कि आईसीसी की जो विमेंस चैंपियनशिप 2022-25 का जो साइकिल है अब उसके ऊपर अब ये इस वक्त टॉप पे बैठी है पाकिस्तान की विमेंस टीम. ठीक है जी. एंड एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट जी वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम. इट अराइव टुडे एज ऑफ टुडे मंडे, यानी के इट अराइव टुडे टू प्ले 3 ODIs. और ये 14 साल के बाद आए हैं जी, इधर मुल्तान में ये पहुंचे हैं, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में अब ये खेलेंगे. और यहां पे ये मैचेस जो हैं June 8 से शुरू होंगे, 8, 10 and 12 को खेले जाएंगे. और वेस्ट इंडीज की टीम को लीड कर रहे हैं उनके स्किपर निकोलस पूरन, तो आज इनको यहां पे पाकिस्तान में वेलकम किया गया है.
ऑल द बेस्ट.
यस,
ऑल द बेस्ट जी.
जी जी जी,
ये थी हमारी आज की खबरें और बकौल शादी जी के खरबें. ये थी आज की खरबें और बाकी की खबरें इंशाल्लाह ताला कल फिर आपको 5:30 बजे जो है सारी न्यूज दी जाएगी.
बट वी विल मिस यू मजीद भाई.
यस,
आप क्यों जा रहे हैं?
कुछ ओनली फॉर फोर डेज आई हैव टू गो. एंड मेरे बड़े अच्छे दोस्त की बेटे की शादी हो रही है, तो उसमें मुझे अटेंड करना है. एंड आई बी इन वैंकूवर एंड आई बी बैक इंशाल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी. आई बी बैक आफ्टर 4 डेज, नो प्रॉब्लम.
नहीं, हम आपका फंक्शन खराब करेंगे, हम आपको वहां पे फोन ही करेंगे. हम आपको कहेंगे नहीं, खबरों में आपको बैठना पड़ेगा हमारे साथ. व्हाट इज दिस.
तीन घंटे का फर्क भी है, मेरा ख्याल है 3 घंटे का फर्क है यहाँ से ब्रिटिश कोलंबिया।
हाँ तो क्या हुआ मजीद भाई, वहाँ पे जो है यहाँ पे हम 5:30 शुरू करते हैं, तो वहाँ पे आप कौन सा सो रहे होंगे, 2:30 ही होंगे।
That'll be my prime time.
हाँ, या 1:30 कुछ ऐसे।
सब I'll see you next week. Chandra ji, thank you so much.
Okay, ji, thank you.
Our sponsors ke paigamat, we'll be right back.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दा दा भी चलाने हो, मैनुअल जा ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस ले क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com, QTL बिकॉज वी केयर।
ओ माया मेहंदी रोका या व्यादा होवे मौका, प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
स्वीट महल वाले दा बिल्कुल नवा प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर, 100 to 700 तक दी कैपेसिटी, ते खाना उही लाजवाब। स्वीट महल वाला प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर, कन्वीनियंटली लोकेटेड इन बॉन। हुणे कॉल करो अते अपनियां पार्टियां बुक कराओ, 416-433-9191, 416-433-9191।
प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
सिटी ऑफ ब्रैम्पटन दी सालाना फार्मर्स मार्केट वापस आ गई है, जिसनु प्रेजेंट करनगे मेरिडियन क्रेडिट यूनियन वाले 2022 सीजन, जो के शुरू हो रहा है जून 11 तो। ए हर हफ्ते 8 बजे तो लेके 1 बजे तक अक्टूबर 8 तक जारी रहेगा, चाहे बारिश आए चाहे ना, मार्केट ते साड़ी चलती रहेगी, जो के लोकेटेड है वेलिंगटन स्ट्रीट और गेज पार्क विच। इस दा मजा उठान वास्ते और अपने पसंदीदा किसाना और वेंडर्स नु मिलन वास्ते तैयार हो जाओ। ज्यादा जानकारी वास्ते brampton.ca/market नु विजिट करो, ते आओ फिर मिलने आ इस मार्केट विच।
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नु मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे।
SNS लॉयर्स को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई अज ही SNS लॉयर्स नु कॉल करो, 416-655-2000।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨੂਅਲ $5,000 ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਪਨੀ ਪੇਡ 92% ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਜਿੱਥੇ $20 ਪਰ ਆਵਰ ਪਲੱਸ $5,000 ਈਅਰਲੀ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਹਰ ਫਰਨੀਚਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਮਾਓ। ਹੁਣੀ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜੌਬ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, 416-836-6974, 416-836-6974।
शाह एंटरटेनमेंट के नासिर शाह लेकर आ रहे हैं पूरी दुनिया का मकबूल तरीन शो खबर हार आपके अपने शहर ब्रैम्पटन में, जून 26 शाम 5 बजे एट कैनेडियन कन्वेंशन सेंटर ब्रैम्पटन में। खबर हार आफ्ताब इकबाल अपनी पूरी टीम के साथ आपके शहर ब्रैम्पटन में। टिकट्स और स्पॉन्सरशिप के लिए कॉल कीजिए 416-526-6800, 416-526-6800।
क्या आपको मॉर्गेज के लिए प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है? मॉर्गेज डिलीजेंट के मुकेश चौहान कैन हेल्प विद 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल इंडस्ट्री। ही स्पेशलाइजेस इन मॉर्गेजेस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। कॉल मुकेश चौहान 6475127000। और अगर आपको बैड क्रेडिट, कंज्यूमर प्रपोजल या बैंकरप्सी जैसे इशू हैं और बैंक ने डिक्लाइन कर दिया है, वेदर यू आर फर्स्ट टाइम होम बायर और नीड रीफाइनेंस और प्राइवेट मॉर्गेजेस, कॉल मुकेश चौहान 6475127000, FSRA 10252, कंडीशन अप्लाइज।
अगर हो आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर से परेशान, तो कॉल करें मुझे, मेरे मेहरबान बना करके दूंगा आपको ऐसा प्लान कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाएगी आसान। मसला हो चाहे आपकी मॉर्गेज उतारने का, बच्चों की एजुकेशन का, या आपकी अपनी रिटायरमेंट का, मेरे पास हैं अवेलेबल ऐसे प्लान जो मेक श्योर करते हैं कि आपको मिले अच्छी बचत, लोएस्ट रेट्स, क्योंकि मैं डील करता हूं तमाम की तमाम इंश्योरेंस कंपनी के साथ। फायदा उठाइए कॉल करके मेरे लंबे एक्सपीरियंस का, एट 905-607-5000। मैं हूं फजल वदूद फ्रॉम इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज। सी यू सून।
विल स्टेज ओंटारियो का सबसे बड़ा पाकिस्तानी बफे 40 से ज्यादा आइटम्स के साथ एंजॉय करें हमारे डिलीशियस मेन्यू को कढ़ाई करीज बारबेक्यू बारबेक्यू प्लेटर रोल्स एंड मच मच मोर और अब डेली डिनर बफे और वीकेंड ब्रंच बफे भी पार्टी रूम्स या कैटरिंग सर्विसेज के लिए कॉल 9052323663 6477744888 विलेज टेस्ट
जी आप एक तो फिर से खुश आमदेद कहना चाहती हूँ मैं अरफा मुजफ्फर आपके साथ और आज तो आपकी कॉल भी लेनी थी बड़ा कुछ हुआ हुआ दुनिया में साहब बिल्कुल स्टूडियो का नंबर अच्छा जिया जी वैसे दिया करती होती हैं साढ़े छः जी जी जमा साढ़े छः से सात के दरमियान आज के बाद आपने कॉल्स नहीं दी
हाँ, आज क्या हुआ
अरे आज कॉल मिस हो गए भैया अभी कॉल कर लें 4166201778 हम शादी जी को पकड़ के लेके आते हैं यहाँ पर आज आई हैव नो क्लू व्हाट हैपेंड व्हाई डिडंट वी टेक कॉल्स वी डिडंट टेक कॉल्स ये लीजिए जी पहली कॉल आ रही है आपके लिए जी हेलो अस्सलाम वालेकुम
हाल क्या हाल है आपका महाराज
बखैर है जी कौन बात कर रहे हैं
मेरा नाम सुरेंद्र
जी सुरेंद्र जी
मैं आपका प्रोग्राम अक्सर सुनता हूँ मैं काम से घर जा रहा होता हूँ मैं शादिया जी का बहुत अच्छा है जो ऐसे बताती सब कुछ
जी आपको बहुत सुरेंद्र जी सबसे पहले तो आप बड़े दिल वाले हैं आपको बहुत शुक्रिया न्यूज इज अ न्यूज
लेकिन आई ओनली वन प्रॉब्लम
जी सर हुक्म करें
प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है शादिया जी का बहुत पसंद करता हूँ जैसे वो टाइप करती है लेकिन आप इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस दे ऊपर
मैं क्या करती हूँ इंडिया के लिए
नहीं नहीं मेरा भी आप बहुत ज्यादा अपनी इंडिया के बारे में बताती है ऐसे हो गया आपसे हो गया प्रोग्राम आपका मैं पसंद करता हूँ लेकिन आप ये नहीं बताते भी दाबू छुपा हुआ कराची में है और जो कैंप है वहाँ लगे वहाँ से आ रहे हैं टेररिस्ट आ रहे हैं उसके बारे में आप कोई बात नहीं करते
सुरेंद्र भाई सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने बड़ी अच्छे तरीके से बात की हम न्यूज इंटरनेशनल दिया करते होते हैं पाकिस्तान में एक बात याद रखिएगा कि मैंने अगर अपने घर को नुकसान पहुंचाना है या मैंने अगर दुनिया में किसी को शो करना है तो मैं अपने घर चाहे आप तेनी तबाही फेर लवाऊंगी पाकिस्तान में टेररिस्ट अगर हैं तो वो टेररिस्ट कहीं और से आते हैं किसी और कंट्री के लिए काम करते हैं नॉट फॉर पाकिस्तानी टेररिस्ट डैमेजिंग पाकिस्तान आप मुझे एक बात बताइएगा मैं बड़े ठंडे दिल से आपसे पूछ रही हूँ और मैंने आपकी कॉल को कहीं नहीं रोका आपने जो कहा अच्छी बात है सो आपका पॉइंट ऑफ व्यू एयर पे गया मुझे एक बात बताएं कौन सा मुल्क है जो टेररिस्ट को पनाह भी दे और अपने घर च मार भी पवावे आई अंडरस्टैंड अगर आप मुझे कहते हैं ना पाकिस्तान के पॉलिटिशियन करप्ट हैं या मुझे कुछ इस तरह की बात कहते तो मैं आप मेरा दिल लगता था आपके साथ मगर अगर आप ये कहते हैं कि जी वो बताते नहीं कि टेररिस्ट जो हैं मुझे आज तक बताइए कि इंडिया के बीच में इलेक्शन के दौरान टेररिस्ट के अटैक्स हुए ठीक मगर पाकिस्तान में तो आए दिन टेररिस्ट का अटैक हुआ होता है अभी चार दिन पहले एक अटैक हुआ था कौन सा मुल्क है जो टेररिस्ट को पाले भी रोटी भी दे पैसे भी दे और अपने मुल्क में ही अटैक कर ले अपने ही बलोचिस्तान को तबाह कर ले अपने ही पिशावर को तबाह कर ले अपने ही कराची को तबाह कर ले कौन सा मुल्क है देखिए आप मुझे ऐसा और मैंने हमेशा आप लोगों की तारीफ की इंडिया में हमें ना हम एक उंगली दूसरे की तरफ करते हैं तो तीन उंगलियां हमारी अपनी तरफ होती हैं पाकिस्तान का मैं कहती हूँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे इदारे हमारे एजेंडे को प्रमोट नहीं करते वो अपने घर में बैठे खून ही मिट्टी लाते रहते ने इंडिया इज ग्रेट इन अ वे कि वो लॉबिंग के लिए इवन अमेरिकन जो असेंबलीज हैं और अमेरिकन जो सेनेटर्स हैं वहां तक लॉबिंग के लिए पहुंच गए दैट इज द रीजन एंड दे आर फोकस्ड वी आर नॉट फोकस्ड आप ना ठंडे दिल से मेरे भाई बैठ के सोचिएगा चाहे वो पाकिस्तान है चाहे इंडिया है जब से और मैंने हमेशा ये लफ्ज कहा कि इन मुल्कों की तरक्की कमाल की थी हमारा रेशम यानी बरे सगीर पाको हिंद का रेशम बरे सगीर पाको हिंद की हर चीज वॉज सुपर्ब पुर्चुगीज और इंग्लैंड वाले वहां से टेक्नोलॉजी को लेके यहाँ आए थे बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मुझे आपको चाइना वालों, चाइना को ड्रग पे लगा दिया था, हमें रिश्वत पे डिवाइड एंड रूल के ऊपर लगा दिया था। ठीक
ठीक
तो मैम, मगर मैं ठंडे दिल से, अगर हम इंसान है तो मैं तो आज ना मुझे रशिया जाना है ना मुझे यूक्रेन जाना है, टुडे आई वाज फीलिंग के पॉलिटिशियंस मरवा के आप एक दरमियान की लाइन के ऊपर फैसला कर लें, मजमे ने मर भी जाना तो किसी का कुछ जाना नहीं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया,
थैंक यू
वेरी मच। मगर ठंडे दिल से सोचिएगा, कौन सा मुल्क है जो टेररिस्ट को पालता भी है और अपने ही मुल्क में अटैक रोज 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 करके बैठ जाता।
नेक्स्ट कॉल जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओके नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम,
कौन बात कर रहे हैं सर?
सर मैं इकबाल बात कर रहा हूँ
जी। इकबाल भाई
साहब, सिस्टर बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े बाइज्जत और मुअद्दबाना तरीके से अभी जवाब दिया है, ये आप ही का खासा है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो मोहतरमा दूसरी नहीं थी, वरना उन्होंने अभी जो था उसको बस वो कहते ना मरीना।
आपको मैं एक बात बताऊं, देखिए
मरीना मेरी बात सुन ले, वो जो मरीना खान थी ना, उसकी रूह जो है, हालांकि वो हयात है, उस स्टाइल में बात करके जो है ना वो इज्जत नहीं रहती जवाब देने की। अब मैं आपको सलाम करता हूँ, अदब से जवाब देती है।
बस देखिए भाई, मैं पाकिस्तान का शाजिया जी के बारे में मैं इतना कहूंगी, शी इज अ वेरी स्ट्रांग पिलर ऑफ 770, शी रियली वर्क्स हार्ड फॉर 8 आवर्स, और मैं 8 घंटे फुल टाइम स्क्रीन मेरे पास डिफरेंट न्यूज़पेपर की हो तो मेरा ख्याल है मेरे लिए भी मुश्किल होता है। एंड बाज़ोकात न्यूज़ इतनी टफ होती है तो हम हंसते बोलते अंदाज में न्यूज़ को आपके साथ शेयर करते हैं, यूनी का खासा है, मैं तो बहुत नालायक हूँ।
जहाँ वैसे उस तरीके से तो बहुत सारे लोग बात करते हैं, वो तो जो है ना उमर शरीफ स्टाइल या मरीना स्टाइल, ये जो आपका स्टाइल है ये बहुत कम बाकी रह गया है।
मैं ओल्ड हो गई हूँ ना, मैं उम्र के साथ
मैं भी आप ही की उम्र का हूँ, लेकिन अदब जो खबरें होती है ना वो अदब से होनी चाहिए, वो उस तरह नहीं होनी चाहिए कि जैसे कि बहरहाल।
बहुत शुक्रिया, मगर मैं आपको एक बात,
बहुत शुक्रिया इकबाल भाई,
बहुत शुक्रिया। जिंदगी में बाज़ औक़ात मैं अक्सर ये सोचा करती होती हूँ कि जितने कोचेज हैं, जो कोच होते हैं ना, वो मैदान में खेल नहीं सकते, खिलाड़ी खेलता है, कोच मशवरा ज़रूर दे सकता है, टीम को ट्रेन करने में कोच का बड़ा रोल है, मगर खिलाड़ी जो खेल सकता है, बाज़ औक़ात मैदान के बाहर और मैदान के अंदर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आज ही मुझे एक प्रोग्राम हम करना चाह रहे थे तो मुझे उसके जो रेट्स मिले ना पर प्रोग्राम 1 आवर वॉज कॉस्टिंग अस अराउंड 1000, एंड आई सेड वी कैंट अफोर्ड इट बिकॉज वी डोंट हैव उस तरह की, हमारे पास रेवेन्यू ही नहीं है जो हम इस तरह का प्रोग्राम कर सकें। शायद अगर आपने प्रोग्राम शुरू से नहीं सुना तो मैंने ये कहा था कि आज शाजिया जी ने मुझे 6 फुट नीचे ज़मीन के फेंक दिया, because that's what it is,
costly,
it is very expensive. So magar Shazia ji is working hard for our website, for the news, and magar main tamam pakistani bhaiyon behno ko kehna chahti hu ke pakistan ki burai karke hum apne pet se kapda uthate hain, main indians ko is lihaz se zarur kehti hu ke wo तमाम के तमाम एक प्लेटफॉर्म पे हैं जो उनकी गवर्नमेंट ने उनको दिया, यानी वो चीथड़ा एक दूसरे को नहीं करते। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हम पाकिस्तान के टेलीविज़न को या पाकिस्तान की गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जब हम अपने इदारे के लिए शॉपिंग करने जाते हैं तो हम अपनी हर परचेज में 15% 20% 30% कमीशन देते हैं, स्कूल से मुतल्लिक, कॉलेज से मुतल्लिक, आपके इदारों से मुतल्लिक, जो कि मेरा ख्याल है हमें डीप डाउन लेके चलता चला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी।
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम,
कौन बात कर रहे हैं सर?
जी मैं महमूद बात कर रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा था कि जो इंडिया में कहने के जिन्होंने गुस्ताखी की है, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ
जी,
कि ये गलत चीज है कि आप, ये फ्रीडम नहीं है कि किसी के जो जो हमें सबसे ज्यादा प्यारे उनके खिलाफ आप बात करें ना।
सही कहा।
तो हर एक को हर मजहब के लिए हर मजहब की एहतराम करना चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो इस लिहाज से मैं उनकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और उनको
बहुत शुक्रिया, बिल्कुल हम मजम्मत करते हैं। मगर भाई साहब मेरा आपसे सवाल है कि यूनाइटेड अरब अमारात ने नरेंद्र मोदी को बुला के अपने इलाके का सबसे बड़ा अवार्ड दिया। OIC का मुस्लिम कंट्रीज का था, मगर सुषमा स्वराज को उन्होंने एज ए गेस्ट इनवाइट किया। अरब कंट्रीज अपना तमाम की तमाम लेन देन कर रहे हैं। मेरे आपके कहने से जब यूनाइटेड अरब अमारात ने भी आज कंडेम किया, ऑफ कोर्स प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम पे, और ये कोई आम लोग नहीं है, BJP के दो आला नुमाइंदे हैं, अगर उन्होंने किया है तो इसमें वो ममालिक जिनके सामने सऊदी अरेबिया को स्टेप लेना चाहिए। सऊदी अरेबिया इज द बिगेस्ट एलाय ऑफ इंडिया।
बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि इनको लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें ना, अगर 10 आदमी और एक अकेला कर रहा है तो वो तो अगर ये मोहतेज हो जाए और इकट्ठे हो जाए तो किसी को कहो की हिम्मत ही नहीं होगी कि किसी के खिलाफ करने की।
हैव यू हर्ड अबाउट डिवाइड एंड रूल? दिस इज डिवाइड एंड रूल। मुस्लिम कंट्रीज आर डिवाइडेड ऑन अ कॉज। ठीक
ठीक है जी,
बहरहाल बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यूनाइटेड अरब अमारात ने जब कंडेम किया है तो इंडिया ने उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। यस, पाकिस्तान ने जब कंडेम किया तो इंडिया ने स्ट्रांगली इसके ऊपर कंडेम किया है। दिस इज आवर पर्सनल मैटर, दिस इज नॉट पर्सनल मैटर। अमेरिका को यहां कंडेम करना चाहिए, बिकॉज पूरी दुनिया के पानियों में अमरीका के जहाज चलते हैं दुनिया में अमन रखने के लिए, मगर मैं आप 10 बंदे और 100 बंदे और यूक्रेन में चले जाएं, एक नस्ल खत्म होती चली जा रही है, ठीक, मगर वडेरों का कुछ नहीं जाना। कल जो बाइडन और उनकी बेगम साहब, ऑफ कोर्स दे आर हेड ऑफ द स्टेट्स, तो वो अपने बीच पे गए हुए थे जहाँ पे एक तैयारा, जिसने बाद में इन्होंने कह दिया कि उसने जो एयर को की हदूद को क्रॉस करके इनके घर के ऊपर की तरफ आ गया। और आप सोचिएगा जहाज कितनी तेजी से चलता है, विद इन सेकेंड्स 2 F-16 और फिजाइया के तैयारे जो है ना वो वहां पहुंच गए। अल्टीमेटली इस जहाज को उतार लिया गया होगा, बाद में इन्होंने रियलाइज किया, जो बाइडन और उनकी बेगम साहिबा को इमीडिएटली फायर ब्रिगेड के जो ऑफिस था उस तरफ को मुंतकिल किया गया। तो लीडर्स की जिंदगी कुछ और है, बट अनफॉर्चुनेटली आम आवाम मरते हैं ना, तो आप यकीन करें हमारी नस्लों का DNA भी चेंज हो जाएगा। इट वोंट मैटर, इट वोंट। हिरोशिमा पे जब दो बॉम्ब्स गिराए गए थे, जेनेटिक मेकअप को चेंज करके किसी ने आज तक कहा? आई हैव अ बुक, लेट मी ब्रिंग इट, मैं आपको दिखाती हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये शख्स फौजी था और जो केमिकल वेपन्स को इस्तेमाल किया गया, उसने बाकायदा अपनी रिसर्च पे कहा कि इन केमिकल वेपन्स की वजह से कितनी दुनिया का DNA कैसे चेंज होगा, मगर वो आम आदमी के लोग हैं, दीज आर पॉलिटिशियन अराउंड द वर्ल्ड। जी अस्सलाम वालेकुम। जी
वालेकुम बाजी अपा, माजिद भाई, तनवीर बात कर रहा हूँ, कैसे आप लोग?
जी तनवीर भाई,
मैं ये कह रहा था वो जो साहब पाकिस्तान की वो बुराई कर रहे थे इंडियन के, वो जरा उस पे लग रहा था दारू पिया हुआ है, तो उस पे जरा ध्यान मत
दे। इसका मैं जवाब दे, आपने अगर आपने बड़े ठंडे दिल से सुना, वो सुरेंद्र उनका नाम, उन्होंने बड़े रिस्पेक्टफुली बात की थी, उन्होंने
मुझे लगा कि जैसे दारू पिया
हुआ। नहीं नहीं नहीं, कतई। अच्छा, और मजे की बात ये है, हाँ नहीं, गुमान नहीं करना चाहिए, गुमान नहीं करना चाहिए, उन्होंने दारू
हैंडल कर लिया।
दिस इज अ ब्यूटी ऑफ अ कंट्री के इंडिया में अपने जो अवाम है दे आर ऑल एट द सेम पेज, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कंट्री। मेरे तो पाकिस्तानी बहुत समझ कि आप तारीफ, मैं तारीफ इस लिहाज से कह रही हूं कि मेरा रवैया मेरे अपने मुल्क के साथ क्या है। तो उन्होंने अपनी रिजर्वेशन का बड़ा वैलिड सवाल था, क्योंकि अच्छा। इंडिया ये कहता है कि दहशतगर्द पनपते हैं पाकिस्तान में, उनका ये सवाल था, जिसमें मैंने उनसे कहा कि अपने मुल्क में दहशतगर्दों को पाल के अपने ही मुल्क में तबाह, बलूचिस्तान हमारा जल रहा है, एंड दिस इज द नेक्स्ट एजेंडा। अभी जो कहा भी गया, इमरान खान ने भी जो कहा, या इससे पहले बिलावल जरदारी साहब ने भी ये बात कही थी कि कल को सिंध अलग हो सकता है, सबको बलूचिस्तान अलग हो सकता है, तो ये इसी ग्राउंड पे कहा था कि उन लोगों को क्या कहते हैं कि उनके दिलों में नफरत बोई जा रही है, जो टेररिस्ट हैं वो कुलभूषण यादव हाजिर सर्विस मुलाजिम था, वो और उसकी टीम के, वो अरकान और बहुत से और अरकान ईरान के रास्ते पाकिस्तान आते थे, उनके पास पाकिस्तान के आईडी कार्ड्स भी थे. तो देयर गवर्नमेंट इज एक्टिवली वर्किंग. आर गवर्नमेंट आई डोंट नो. हमें तो वो ही बताया ना कि हमारा आज जब पाकिस्तान ने प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब बयान दिया और पाकिस्तान ने उसको कंडेम किया, तो इंडिया ने जवाब दिया अपने घर को संभाल के रखो, तुम्हारे अपने घर में तुम्हारे मसले, तुम तो ह्यूमन राइट्स को केयर नहीं करते और तुम, मगर यूएई को नहीं. वो ये जवाब दे सके, अगर वो सऊदी अरेबिया भी कहता उसको ये जवाब ना दे सकते. आज एंथनी ब्लिंकन ने जो रिपोर्ट आई है उस पर उन्होंने कुछ कहा, अभी तक उनको जवाब नहीं दिया, मगर यस अपने बराबर के तो को तो जवाब दे सकते हैं. बहुत शुक्रिया भाई.
शुक्रिया. बस वो जरा सा मुझे एक थोड़ा सा ऐड करना था कि वो एक ऐड आता है आपका जो शो हो रहा है ना, नासिर शाह साहब कर रहे हैं
जी,
आफ्ताब इकबाल का, तो उस ऐड को जरा दोबारा चलाइएगा. वो मुझे लगता है कि जीशान जो है वो आफ्ताब इकबाल नहीं कह रहा, वो आपा इकबाल कह रहा है.
आप बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल सही कहा. आप यकीन कीजिएगा कि मैं उस ऐड को, क्योंकि मेरा काम ही रेडियो सुनना है, मैं जितनी बार उस ऐड को सुनती हूँ मुझे आपा इकबाल समझ आता है.
बहुत मैं सही हुआ, दो हो गए अब तो इसका मतलब एक मैं
बिल्कुल आप
मुझे उनके पास अपने कान चेक कराने जा रहा.
नहीं 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 मैं जाती तौर पे जितनी बार उसको सुना है और मैं ये कहती हूँ इसने आपा इकबाल क्यों कहा है, आपा इकबाल इसने क्यों कहा है. बहुत शुक्रिया.
थैंक यू.
बहुत मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
हेलो.
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. कौन बात कर रहे हैं सर?
सर मैं दोबारा बात कर इकबाल बात कर रहा हूँ. मैं सिर्फ ये भाजी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इन्होंने अभी कहा है कि हम अपना ही पेट नंगा करते हैं तो सिर्फ पार्टियों के